मुबारक 3 रमजान अल मुबारक 1442 हिजरी अप्रैल की 16 तारीख सन 2021 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ. नाम है मेरा अदील. प्रोग्राम समराइज में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक, लेकिन प्रोग्राम करेगा आपको एंटरटेन All the way till 11 o'clock in the morning. बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें आगे पसंद का म्यूजिक. आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर. उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे. सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों के रमजान मुबारक का आगाज भी अच्छा हुआ होगा. टुडे ऑफ कोर्स द थर्ड रमजान, तीसरी सहरी निमट चुकी है. सोचें तो 10% ऑफ आर सहरीज आर ऑलरेडी डन. कुड यू बिलीव, टाइम फ्लाइंग फास्ट. ऑल राइट, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @adil_azhar पर. दैट्स @adil_azhar. All right, so 7:24 हो चुके हैं and it's a bright and sunny morning here in Karachi. वैसे मौसम थोड़ा सा कराची वालों पे मेहरबान जरूर हुआ. I mean it's not that hot. It is still warm. Kal I think highest was 32 in Karachi, which I would say ke chalega mere khayal se. But aane wala dinon mein thodi si garmi badh sakti hai. I mean it may touch 35, maybe 36 again. But I really hope aapke respective shehron mein mausam yahan se to behtar hi hoga. Aaj ka pehla tweet mere paas jo aaya hai Dr. Zeeshan Beg saab ne kiya hai. Kehte hain ji Helga Katrina Ahmed, a German born environmentalist who moved to Pakistan in 1957, died in Islamabad. She was the wife of late Jameel Ahmed, the author of an acclaimed collection of short stories about life in Pakistan's tribal land, who died in 2014. Surprisingly, I never heard about her, but now that you have mentioned, we'll surely read about her. Thank you so much, Dr. Zeeshan Beg. All right, Manzoor Ahmed Bhatt sahab, wa alaikum assalam. Kehte hain aaj Jumatul Mubarak, yani is hafte ka aakhri show. Aaj bhi hamare Sahil Ahmed Mir sahab Khaniyar Srinagar se maujood hain. Kal aapne unko apna paigham sunakar bahut zyada khush kar diya. Aajkal ye Forever company ki taiyar karda ashiya jaise sanitizers, mask aur health सप्लीमेंट्स बेचते हैं. बहुत सारी बेस्ट विशेस, नेक ख्वाहिशात हमारे लिस्टर साहिल अहमद साहब के लिए. मोहम्मद माजिद साहब, वालेकुम अस्सलाम. एंड देन वी हैव कॉट तहसीन अमजद, कहते हैं ब्लेस डे मुबारक. थैंक यू सर. फहीम अली खान, सब लिस्टर्स को सलाम कहते हैं. एंड देन फजल फैजी साहब, थैंक यू. आपने हमारे लिस्टर्स फहीम, तहसीन और पीर जहीर साहब को जो है वो स्पेशल रिगार्ड्स भेजी हैं पिशावर से. एंड रियाजुर रहमान साहब कहते हैं ज़िया शाहिद खबरें अखबार और टीवी वाले 13 अप्रैल को इंतकाल कर गए. हम उनकी तर्जुमा की गई कहानियां उर्दू डाइजेस्ट में पढ़ते थे. उनका उन आप सब उनका कॉलम यादें मुलाकातें उर्दू डाइजेस्ट में 7 बरस में पढ़ सकते हैं. ओके, टेकिंग अ ट्रिप डाउन द मेमोरी लेन. बिल्कुल जी, इनसे एक बार मुलाकात का इत्तेफाक हुआ था, बट दैट वॉज वेरी लॉन्ग टाइम बैक इन मुल्तान. जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था वहाँ पे भी ये ठहरे हुए थे. ज़िया शाहिद साहब बहुत ज़्यादा टेलीविजन पे तो मेन स्ट्रीम चैनल्स पर नज़र नहीं आते थे, बिकॉज एक ज़माने में अपना भी टी वी चैनल ये चला रहे थे. बहरहाल रोज़नामा खबरें पाकिस्तान के, अगर देखा जाए पिछले को 30 साल के जो बड़े जर्नलिज्म में नाम थे, ज़ाहिर ज़िया शाहिद साहब उनमें थे. And not being talked about much is this passing away. Baral ji, Allah maghfirat farmaye. Jawad Zameer sahab kehte hain, good morning, my friend. Muhammad Ali Mirza sahab kehte hain, it's raining in Pindi. Are you enjoying your show? Wow, that is great. Raining in Pindi. Kal it was raining in Lahore. Today is raining in Pindi, and that is so cool. Zabardast. Peer Zaid sahab, thank you so much. Kal mera naam galat liya. My name is Abid Yasin. All right, Abid Yasin, mazrat khwa hu. पीर जहीर साहब कहते हैं वेलकम टू अर्ली ज्वाइनिंग. नहीं नहीं, कौन अर्ली ज्वाइनिंग सर, ये क्या बात कर दिया आपने, इसी टाइम पे तो आता हूँ मैं बिल्कुल. एंड देन वी हैव गॉट पाकिस्तानी क्लाइंबर सरबाज खान. आदिल नईम साहब का ट्वीट आया, कहते हैं पाकिस्तानी क्लाइंबर सरबाज खान एंड अब्दुल जोशी आर लेस देन 500 मीटर अवे फ्रॉम अन्नपूर्णा वन समिट. ओके, दैट इज़ प्रीटी नाइस. यानी नेपाल में मौजूद हैं और ये जो है ज़ाहिर हम पाकिस्तानी जो हैं वो हमें दो जहां माउंटेन्स की हाइट वगैरह और ये सारी चीज़ों की बात की जाती है, सो हमें ज़ाहिर है वी आर अवेयर ऑफ लाइक वी नो अबाउट माउंट एवरेस्ट एंड देन वी नो अबाउट K2 ऑफ कोर्स, जो कि हमारा कौमी चोटी है, हमारी कौमी चोटी है, कौमी पहाड़ हमारा जो है K2। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए विच इज़ द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन्स, या जो दुनिया के जो टॉप माउंटेन्स आती हैं, आपको पता है कि नेपाल में बाय द वे दुनिया की जो टॉप 10 में से 8 माउंटेन्स जो हैं दे लाई इन नेपाल, बिकॉज माउंट एवरेस्ट तो इज़ ऑन द बॉर्डर ऑफ चाइना एंड नेपाल, लेकिन इसकी एक्सेस जो है वो नेपाल से ज़्यादा बेहतर है. सो देर इज़ लाइक माउंट एवरेस्ट एंड देन वी हैव गॉट K2 एंड देन देर इज़ अन्नापूर्णा एंड स्टफ. सो येस, इट्स गुड टू नो दैट पाकिस्तानीज आर जैसे कहते हैं कि दे आर अबाउट टू क्लाइम ऑन द टॉप ऑफ दैट पीक टू, दैट इज ग्रेट. चलो जी, Anything else? नहीं. Okay, तो फिर आज क्या सिलसिला है प्रोग्राम में? ऑफ कोर्स काफ़ी सारी बातें होंगी फॉर श्योर, हमेशा की तरह क्रिकेट का भी जिक्र होना है, बिकॉज आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका सीरीज जो है दैट इज़ गोइंग टू गेट रैप्ड अप. एंड यस, पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है मैच जीतने के लिए. मौका मिला तो फुटबॉल का भी कुछ जिक्र करते चलेंगे. कल रात गए आर्सेनल, वर इन एक्शन, सो वर मैनचेस्टर यूनाइटेड. एंड इसके अलावा फ्रांस ने कह दिया है जी कि पाकिस्तान में जो सिटीजन्स हैं उनके, वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं, बिकॉज हालात उनके लिए साजगार नहीं है. गवर्नमेंट ने कुछ सख्ती का मुजाहरा ज़रूर किया है, गवर्नमेंट की बॉडी लैंग्वेज से भी अब लग रहा है, कुछ उनके इकदाम से भी लग रहा है. अब तो पैमरा ने भी पाबंदी लगा दी है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये धमा चौकड़ी मचाई हुई थी पिछले पूरे हफ्ते पाकिस्तान में, अब उन पर बैन लगा दिया गया है. सो आई रियली कॉन्ट टेक देयर नेम, कॉन्ट टॉक अबाउट दैम. बट बहरहाल अभी सुना है कि उनके कुछ लीडरान की तरफ से भी अब मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं, जिसमें उन्होंने लोगों को काम रहने की और मुश्तइल लोगों को कहा है कि जी वो अब वापस चले जाएं अपने घरों को. सो देखते हैं कि फ्रांस का क्या इसके बाद कुछ सिलसिला बदलता है या नहीं. कि जी इंडिया ने, हम कल बात कर रहे थे, इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ कोविड केसेस के हवाले से इन अ डे 2 लाख के नंबर की, और अब दे आर वेल अबव 2 लाख, 2,16,000 केसेस एक दिन में हिंदुस्तान में आए हैं. और जो खबरें और जो पिक्चर्स हिंदुस्तान से इस वक्त आ रही हैं, वो काफ़ी दिल हिला देने वाली हैं, और उनको देखकर आप सिर्फ यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे, आमीन सुमा आमीन. चलें जी, अभी हम क्या करते हैं, आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Fakhir with Allahu. And भाई कमाल, एक ज़माने में जो है ना वो फ़ाखिर ने काम किया है, अब तो बिल्कुल नज़र नहीं आते, लेकिन क्या कह सकते हैं. चले जी, we've got Aisha who says, अस्सलाम वालेकुम भाई, रमज़ान मुबारक. Why do you always talk about cricket and football on your show? ज़िंदगी में और बहुत कुछ है except cricket and football. Just kidding. Love your show. यानी इससे ज़्यादा वैसे आयशा को कंफ्यूज मैसेज तो मैंने आज तक नहीं देखा. बेटा कहना क्या चाह रही हो मुझे ये बता दो. सब कुछ कहने के बाद कह दिया आई एम जस्ट केयरिंग. ऑलराइट भाई, फुटबॉल और क्रिकेट का जिक्र इसलिए होता है बिकॉज एक तो ये कि बोलने के लिए मवाद बहुत मिल जाता है आपको फुटबॉल क्रिकेट, दूसरा मेरा अपना बड़ा लगाव है और अपना बड़ा इंटरेस्ट है. कल रात को अब आप देखें ना कि आर्सेनल जो है वो रात में उनका फुटबॉल मैच था, और सिचुएशन ऐसी थी कि कल का मैच अगर आर्सेनल हार जाता तो फिर इट वुड हैव बीन ओवर फॉर देम. आई मीन इट वुड हैव बीन ओवर, देयर वाज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू इन दिस सीजन फॉर आर्सेनल नाउ. आई मीन इट्स बीन नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन यूरोपियन फुटबॉल एक वाहिद चीज़ थी, उसमें भी सेकंड टीयर टूर्नामेंट में आर्सेनल क्वार्टर फाइनल में कल खेल रहा था, और यकीन जाने मैंने मैच नहीं देखा बिकॉज मैं बिल्कुल दिल नहीं चाहता, क्योंकि मुझे लग रहा था आर्सेनल हार जाएगा कल का मैच और ख़त्म, इट विल बी जस्ट ऑल ओवर. एंड फिर सोने का टाइम भी ज़रा रमज़ान में वैसे ही कम होता है, तो वैसे मैं 4 बजे उठता हूँ, लेकिन यकीन जाने कि मेरी 3:30-4 बजे आँख खुल गई थी, और मैं डर के मारे अपने मोबाइल में स्कोर चेक नहीं कर रहा था कि पता नहीं क्या स्कोर होगा, और मैं अगर हार गया तो फिर मेरा मूड कितना ख़राब होने वाला है शहरी में. खैर ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ आदत से. खैर मैंने मोबाइल अपना जो है वो कोई 10-12 मिनट इंतज़ार करके फिर उसको ऑन किया, स्कोर चेक किया, एंड आई सेड यस बिकॉज आर्सेनल वन दैट गेम 4-0. सो All is well. अब ठीक है, बड़ा मुश्किल मैच है आगे, लेकिन ठीक है जी, डन है. एंड देन वी हैव गॉट पीर ज़हीर साहब, कहते हैं क्या बात है फाखर, जबरदस्त वाकई, इसमें जो है ना वो कोई शक नहीं है. ठीक हो गया जी. एंड देन अच्छे सिंगर हैं, अच्छे गुलूकार हैं. थैंक यू राणा, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज एंड गुड मॉर्निंग टू यू. यार वैसे रमजान के ना ये जो दिन होते हैं ना, इसमें वाकई बहुत बोर करते हैं आप लोग यार, बिकॉज ज़ाहिर है लोगों के टाइमिंग्स वगैरह चेंज हो गई हैं एंड प्रोग्राम में ज़रा पार्टिसिपेशन वो होती नहीं है. मैं ऐसा लगता है मैं अपने आप से अकेले बातें कर रहा हूँ. थोड़े से लोग शायद कुछ गिनती के जो है ना वो सुन रहे हों, बट खैर चलें जी, ठीक है. ओके सो बाकी का सीन है, मैं अभी जब आप लोग अल्लाह हू सुन रहे थे तो आई वॉज वे आई मीन क्या बात करूँ यार, आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू वेरियस न्यूज अक्रॉस द वर्ल्ड. ओके जिसमें I was reading about एक दो खबरें जो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, वो बच्चों वाली नहीं है, बट जो मैं और पढ़ रहा था, I was reading about this mosque in Mosul. जबरदस्त, आजकल मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, that's a very nice book about Salahuddin Ayyubi. It's very well written, it's a very detailed book. It's about the crusades, जिन्हें आप कहते हैं ना सलेबी जंगे जिन्हें आप कहते हैं. तो ज़ाहिर है जब सलेबी जंगों का जिक्र आता है और अगर आप उसका पूरा केस बनाना शुरू करते हैं, यानी उसका पूरा मुकदमा अगर आप बनाना चाहते हैं, सो उसमें एक बादशाह का ज़रूर जिक्र आता है जिसका नाम नूरुद्दीन जंगी था. और सुना होगा आपने, बड़ा मशहूर बादशाह थे ये मगरिब के, लाइक मगरिब नॉर्थ अफ्रीका, एंड वहाँ से ये आए थे. एंड इन्होंने मोसल एक शहर है इराक में, और मोसल शहर जो है बड़ा कदीम शहर है इराक का. रीसेंट टाइम्स में ये शहर बेचारा बड़ा नोटोरियस हो गया था, बिकॉज़ ये वही शहर है जहाँ पे दाइश का जो सरबरा था अबू बकर अल बगदादी, उसने अपनी सो कॉल्ड खिलाफत का जो है वो ऐलान किया था. और जिस मस्जिद में खिलाफत का ऐलान किया था, उस मस्जिद को अलनूर मस्जिद कहा जाता था, अलनूरी मस्जिद कहा जाता था, बिकॉज इसकी फाउंडेशन जो है वो नूरुद्दीन जंगी ने 12वीं सदी ईस्वी में जो है वो रखी थी. और बदकिस्मती ये बड़ी मशहूर मस्जिद थी मोसल में. जब भी कभी आप मोसल की तस्वीरें पुरानी सर्च करें बिफोर दिस सिविल वॉर दैट दे हैड, उसमें ये मस्जिद जो है ये काफ़ी प्रोमिनेंटली फीचर करती थी. और इसकी खास बात ये थी कि इस मस्जिद का जो मीनार था वो लीनिंग था, यानी वो थोड़ा सा टेढ़ा मीनार था, जैसे कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा का था. और उसी मुनासबत से इसको जो है वो अल हदबा कहा जाता था, दैट मीन्स द हम्पबैक. ओके इंटरेस्टिंग. सो मैं खबर ये पढ़ रहा था, छोटी सी खबर है, कुछ भी नहीं. जब मस्जिद तबाह कर, जब आइसिस यहाँ से जा रही थी, यानी आइसिस की ज़रा आप देखें ना, इस्लाम के नाम पे उन्होंने जंग लड़ी और सब कुछ किया, लेकिन जाते हुए उन्होंने इस मस्जिद को जो है वो तबाह कर दिया. और उन्होंने इसको बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि एक खंडर में बदल के चले गए. और अभी भी आपको टाइम मिले गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं अल नूरी मॉस्क, NURI मॉस्क इन मोसल, और आप देखेंगे कि उसमें एक पुरानी तस्वीर भी आएगी उसकी, जिसमें उसका काफ़ी प्रोमिनेंट मीनारेट, उसका जो मीनार है वो आपको नज़र आएगा. और फिर शायद आपको कहीं आगे पीछे उसका खंडर भी नज़र आएगा. खबर मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इस बिल्डिंग को जो है वो यूनाइटेड नेशंस की जानिब से पिन पॉइंट किया गया था कि इसकी रिकन्स्ट्रक्शन की जाएगी. और उन्होंने मोसल के लिए एक पूरा प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, विच वॉज कॉल्ड रिवाइव द स्पिरिट ऑफ मोसल प्रोजेक्ट. और उसमें अब ये मस्जिद के लिए बेसिकली बताया ये कि उन्होंने दुनिया भर में एक कॉम्पिटिशन लॉन्च किया था कि आप इस मस्जिद के डिज़ाइन के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करें. आई डोंट नो वेदर एनी पाकिस्तानी कंपनी पार्टिसिपेटेड दैट और नॉट, वी जनरली डू नॉट, लेकिन बहरहाल एन इजिप्शियन कंपनी हैज़ गॉट द कॉन्ट्रैक्ट. इट्स कॉल्ड द 8 इजिप्शियन, उनके आर्किटेक्ट जो हैं उनको ये चूज़ किया गया है. और इसका डिज़ाइन इस वक्त मेरे सामने है और आई कैन सी अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट मीनारेट देयर, एक बहुत ही प्रोमिनेंट मीनार है इस मस्जिद का. बहरहाल जी, उसकी जो असल फॉर्म थी वो तो ये दाइश वाले तबाह करके चले गए, लेकिन चलें, सम रेस्टोरेशन माइट टेक प्लेस, दैट इज़ वेरी नाइस. आई वॉज रीडिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर मॉस्क During this song. इसके अलावा I did read a bit about crypto trading. एक यार एक crypto trading platform है जिसका नाम है Coinbase, और इस पर बात करेंगे आगे चल के प्रोग्राम में, ठीक है जी. Because उसने अपने आप को जो है वो स्टॉक मार्केट में अपनी लिस्टिंग करवाई है, एंड wow, the valuation that it has got is near $100 billion. क्या कहानी है ये, इस पर बात होती है. लेकिन अभी फिलहाल I'm moving towards a break. We'll catch you right after this. Don't go anywhere and keep listening. All right, that was the guy that PTI people don't really like now, at least Jawad Ahmed. इनकी तस्वीरें आजकल कराची के बहुत सारे, I'm sure लाहौर में भी ऐसे ही होगा ना कि बहुत सारे रक्षों के पीछे लगी हुई होंगी फांसी के फंदे के साथ, बिकॉज आई थिंक उनकी स्लोगन कुछ ऐसे ही है कि महंगाई को फांसी दें एंड ऑल. लेकिन जब तक आपके पास हुकूमत नहीं होती है ना, ये सारी बातें और ये सारे नारे बड़े अच्छे लगते हैं. लेकिन जवाद अहमद साहब की अगर आप लैंग्वेज इमरान खान साहब के लिए नोट करें, हाल ही में इनका कुछ रोहिल हयात साहब के साथ, जो कि इमरान खान साहब के बड़े सपोर्टर हैं, इनके साथ भी कुछ मठभेड़ जो है वो ट्विटर पर ज़रूर हुई है. बट मैन वो हल्का नहीं आता ये जवाद अहमद. ठीक हो गया जी, ग्रेट. चलें जी आम खबरों की जानेब, अब ज़रा नज़र डालते हैं ऑफ कोर्स, एंड वी स्टार्ट विद व्हाट दैट इज, एक सेकेंड कहाँ चला गया. ओके, मुत्तहिदा अरब अमारात का बयान आया है, पाकिस्तान और भारत में ताल्लुकात की बहाली के लिए सालसी कर रहे हैं. ठीक हो गया, दैट इज़ वेरी नाइस. इसके अलावा सरबरा कलदम तहरीक क्या की कारकुनों से एहतजाज ख़त्म करने की अपील. ये कल एक हाथ से लिखा हुआ एक नोट जो है वो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें ये कहा है, ये जो कलदन तंजीम है इसके सरबरा ने अपने सपोर्टर्स को कि वो एहतजाज जो है वो अब ख़त्म कर दें और घर को अपने वापस चले जाएं. सो ठीक हो गया, लेट्स सी क्या होता है. ओके जी, पाकिस्तान ने पेट्रोलियम की कीमतों में कमी की हुकूमत ने मंजूरी दे दी है. तकरीबन 2.25 रुपये के करीब जो है ये पेट्रोलियम की कीमतों में कमी देखने में आई है. ओके, एंड देन वज़ीर आज़म साहब एक रोज़ा दौरे पर कराची और सखर पहुँचेंगे, यानी एक ही दिन में कराची भी निपटाएंगे और सखर भी जो है वज़ीर आज़म साहब जो है वो निपटा देंगे. और इसमें सुनने में ये आ रहा है कि जी ये काफ़ी एक बड़ा पैकेज जो है वो सिंध के लिए इनका देने का जो है वो प्लान है. अच्छा, 16 तारीख का, आज 16 की दोपहर कराची में वज़ीर आज़म साहब की जो जो है वो मसरूफियत है वो बेसिकली शौकत खानम फंड रेजिंग इफ्तार डिनर में जो है वो शिरकत करने आ रहे हैं. सो द मोर लाइक अ पर्सनल थिंग दैट इज कमिंग हियर टू, बट चलें जी ठीक हो गया, क्या कर सकते हैं. बहरहाल तशरीफ तो लाएं. 448 अरब रुपए के पैकेज की बात की जा रही है. फवाद चौधरी साहब को जो एक बार फिर से वजीर इत्तिलात बना दिया गया है, और समझ में नहीं आ रहा ये क्या इतनी शफलिंग होती है, कन्फ्यूजन है. I really don't know why he was removed as the information minister. पता नहीं क्या खता उनसे हो गई थी, ये भी समझ में नहीं आता. इमरान खान साहब जैसे फारिग कर देते हैं अपने ministers को, लेकिन now he is back as the information minister and I think right person for the job. Initially वो पहले भी थे ऐसे, लेकिन समझ में नहीं आई बात के आखिर क्यों हटा दिया गया था. चलें खैर आगे बढ़ते हैं. तो उन्होंने ये कल ट्वीट करके बताया था कि 448 अरब रुपए का पैकेज जो है वो इनका देने का प्लान है. अच्छा ठीक हो गया जी, पेट्रोलियम की कीमत में कमी का जिक्र भी हुआ हुआ है. कोर्ट मेंटेन्स स्टेटस को ऑन शरीफ रेजिडेंस इन लाहौर. ओके जी, बेसिकली शरीफ की जो रेजिडेंस थी जाती उम्रा में वो उसके हवाले से हुकूमत का था कि जी वो, बल्कि खबरें आनी शुरू हो गई किसी भी टाइम उसको जो है वो गिरा दिया जाएगा. लेकिन बहरहाल जी एक बार फिर से रिलीफ मिला है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से शरीफ फैमिली को, और उन्होंने कहा है कि जी स्टेटस को मेंटेन किया जाए, यानी जैसी सूरत हाल अभी है इसको वैसे ही मेंटेन किया जाए. ओके जी, इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट आस्क फॉरेन ऑफिस टू सीक इंडियन रिस्पॉन्स ऑन लॉयर्स अपॉइंटमेंट इन कुलभूषण जाधव केस. अगर आपको याद हो, इंडिया बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा है इस केस के ऊपर, बिकॉज इंडिया के लिए स्टेटस को सूट करता है. वो कुलभूषण जाधव की डेथ पेनल्टी को रुकवाने में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कामयाब हो गए थे. उन्होंने कुछ पाकिस्तान पे कुछ एक्शंस करने की बात की थी कि जी ये आप सहूलियात प्रोवाइड करेंगे. इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है, लेकिन इंडिया ना वकील अपला इसका जो अपॉइंट कर रहा है ना कुछ कर रहा है. सो बहरहाल क्या कह सकते हैं. रिकॉर्ड टेस्ट फॉर COVID-19 कंडक्टेड इन अ डे. जी हाँ, कल मैं बड़ा हैरान हुआ था ये नंबर देख के कि पाकिस्तान ने कल जो है वो 64,685 जो है वो टेस्ट कंडक्ट किए हैं. इससे पहले जो हाईएस्ट नंबर था वो 50,186 था एक दिन में. ये कैपेसिटी कैपेबिलिटी कैसे बढ़ गई ये मुझे नहीं पता, लेकिन जिसमें जो अच्छी बात है वो ये है कि कोरोना के नंबर्स में कोई ज़्यादा बड़ा इजाफा नहीं आया, बल्कि 9% से कम पॉजिटिविटी रेशो जो है वो देखने में आया है. चलें जी, टाइम चेक न्यूज हेडलाइंस. कमर्शियल ब्रेक का भी हुआ है वक्त, वापस आके हम बात करेंगे खेलों के हवाले से. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया, सुबह के 8:08 हो चुके हैं और बात करते हैं हम कुछ खेलों के हवाले से. जी सो यस, खेलों में क्रिकेट, यस पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज, पाकिस्तान का दौरा साउथ अफ्रीका इस वक्त रैप अप होने को है. आज आखिरी मैच है, दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी इन दिस फोर्थ एंड फाइनल T20 मैच. अब ये मुझसे मत पूछेगा कि यार ये चार T20 क्यों रखे हैं, पांच T20 क्यों नहीं रखे. आई डोंट नो वाकई पांच T20 क्यों नहीं रखे. आई मीन इट शुड बी इन ऑड नंबर यार, ताकि सही डिसीजन हो ना. अब साउथ अफ्रीका अगर आज जीत गया तो फिर 2-2 सीरीज बराबर, क्या फायदा हुआ. दे शुड बी अ सीरीज फिनाले एंड ऑल, बट बहरहाल जी आई थिंक साउथ अफ्रीका विल बी वेरी कंफर्टेबल. आई मीन एटलीस्ट वो इस मामले में बड़े कुछ आई वुड से के उनको बड़ा कॉन्फिडेंस, पूरा एतमाद होना चाहिए कि उन्होंने एटलीस्ट अपनी एक डिप्लीटेड टीम के होने के बावजूद पाकिस्तान को दे पुट अप अ ग्रेट फाइट. आई मीन पाकिस्तान ने जो दोनों मैचेस जीते हैं, पाकिस्तान ने अपने रिकॉर्ड चेजेस जो हैं वो रिकॉर्ड किए हैं. और इस सीरीज से पहले अगर आपसे कोई ये बात बोलता कि पाकिस्तान एक मैच में 190 रन बनाया और एक मैच में 205 रन बना के मैच जीत रहा होगा, आप कहते हो रहे भाई कहाँ किधर क्या, पाकिस्तान की बैटिंग तो है ही नहीं ऐसी कि हम इतने बड़े बड़े टोटल जो है वो चेस करना शुरू कर दें. बट साउथ अफ्रीका हैव पुट अप अ ग्रेट फाइट, नो डाउट अबाउट दैट. अब उनके वो बाकी 5-6 खिलाड़ी टॉप के अगर चले गए तो हम क्या कर सकते हैं. हमने कहा था IPL खेलो जाके, अपने मुल्क जलील हो रहा है वहाँ पे पाकिस्तान जैसी वीक टीम के हाथों, बट उनकी मर्जी. सो बहरहाल अच्छा वैसे रिकॉर्ड के आईने में भी अगर देखा जाए ना, सो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका एक दूसरे के आमने सामने अब तक कुल मिला के जो है ना 20 दफा आए हैं. एंड द रिकॉर्ड इज इवन लाइक 10 दफा साउथ अफ्रीका जीता है और 10 दफा पाकिस्तान जीता है. सो अगर आज पाकिस्तान जो भी टीम आज जीती है, सो इट टेक्स द लीड नाउ इन द रिकॉर्ड, विच इज आई वुड से क्वाइट कम्फर्टिंग, बिकॉज साउथ अफ्रीका इज वन टीम जिसके खिलाफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो है ना वो कोई इतना खास है नहीं किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट में फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. मैं ODI और टेस्ट की बात कर रहा हूँ, बट T20 में पाकिस्तान ने इनको फाइट पुट अप की है और कुछ बड़े यादगार मैचेस भी पाकिस्तान ने इनको हराया ना. 2009 वो जो वर्ल्ड कप हम जीते थे उसका सेमीफाइनल शाहिद आफरीदी छा गए थे. एंड देन दैट कोलंबो वाला मैच, उमर गुल की बैटिंग जिसमें चल गई थी यार, वो भी क्या मैच था, कमाल. एनीवे अगर हम अच्छा बाय द वे अगर हम साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बात करें तो वी हैव प्लेड लाइक 10 गेम्स अगेंस्ट देम और वहां पे भी हम 5 जीते हैं और 5 हारे हैं. सो उधर भी पाकिस्तान को जो है ना साउथ अफ्रीका के मैदान में बर्तरी हासिल हो जाएगी. वैसे साउथ अफ्रीका में जनरली पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा ही है. 17 मैचेस पाकिस्तान ने खेले जिसमें से पाकिस्तान ने 10 मैचेस जो है वो जीते हैं और ये 6 मैचेस पाकिस्तान हारा है और एक मैच जो है वो टाई हुआ है. मुझे लग रहा है ये टाई वाला मैच शायद ये वही वाला है, इज़न दैट जो 2009 वर्ल्ड कप वाला जो था ना, जो वो बॉल आउट वाला जो स्टूपिड कानून जो था जिसमें पाकिस्तान इंडिया से हार गया था. वाकई वो बॉल आउट वाला सुपर ओवर स्टिल मेक्स सेंस, बट दैट बॉल आउट थिंग दैट वाज रिडिकुलस. चलें जी, सो ये मैच भी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ऑफ कोर्स शुरू हो रहा है 5:30 बजे और सेंचुरियन में ये मैच खेला जाना है. सेंचुरियन में पिछले मैच में हमने देखा कि 400 से ज़ायद रन जो हैं वो बने. इट्स अ स्मॉलिश ग्राउंड, इट्स अ वेरी बैटिंग ग्राउंड, वेरी फास्ट आउट फील्ड, बहुत रन यहाँ पे बनने की उम्मीद है. बट पाकिस्तान के लिए जाहिर है जो आप जानते हैं ना मसला, वो इनकन्सिस्टेंसी का इशू है. एक तो चले वो तो है, एक मैच में तो छा गया बैट्समैन बल्लेबाज, अगले मैच में फिर विकेट फेंक दी, मसला हो गया. सो दे हैव टू पुट दैट प्राइस ऑन देयर विकेट नाउ. बट बहरहाल आई मीन पाकिस्तान की जो ओपनिंग जो टॉप बैटिंग है दैट्स प्रीटी हैवी. आई मीन इफ यू टॉक अबाउट दैट फैक्ट दैट रिजवान है, वीज इन सम हैविंग सम एक्सेलेंट पर्पल पैच, बाबर ने आई थिंक काफ़ी सारे अपने नक्कादों को खामोश किया, देन फखर इज़ कमिंग वन डाउन, देन हफीज़ विल बी कमिंग एज वेल. सो पाकिस्तान की ये बैटिंग जो है ना ऊपर की तो काफ़ी तगड़ी है. प्रॉब्लम दैट लाइज विद पाकिस्तान इज इन द मिडल ऑर्डर और पाकिस्तान की जो ओपनिंग बॉलिंग है, पाकिस्तान लाइक दे बीन कंसीडिंग अ लॉट ऑफ रन. आई मीन जिस तरह मार्करम पाकिस्तानी टॉप बॉलर्स को जिस तरह उनका भुरकस निकाल के हर मैच में ही पकड़ा रहे हैं, ये लो भाई ये देखो ये रही तुम्हारी टॉप बॉलिंग. शाहीन आफरीदी जिस तरह ही इज़ गोइंग फॉर रन एंड इज़ गोइंग फॉर रन इन वर्चुअली एवरी गेम, विच इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर एवरी वन एक्चुअली. सो मार्करम अभी बाबर से पहले 3 मैचेस में लगातार, या आई थिंक हाँ उन्होंने 3 मैचेस में लगातार 50s जो हैं वो भी बनाई हुई हैं. सो he's been बैटिंग वेल एंड या आई थिंक और तीनों मैचेस में पावर प्ले में कोई 60 के करीब इन्होंने रन बनाए. सो दैट्स द एरिया दैट पाकिस्तान रियली नीड्स टू वर्क. वो जो एक शुरू में एक जमाना था इमाद वसीम आया करते थे, थोड़े से रन के फ्लो को शुरू में रोक दिया करते थे. दैट इज समथिंग दैट पाकिस्तान इज लैकिंग. सो बहरहाल जी बेस्ट ऑफ लक टू द पाकिस्तान साइड, यू रियली वांट देम टू विन दिस सीरीज 3-1. एंड इट वुड फील सो कूल राइट. साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराना, इरिस्पेक्टिव कितनी हल्की टीम उनकी खेल रही है, लेकिन फिर भी इसकी फीलिंग जो है ना वो बिल्कुल एक अलग ही है. चलें जी जाते जाते ज़रा फुटबॉल का जिक्र जो है करते चलें. यूरोप की जो सेकंड टीयर फुटबॉल लीग होती है उसकी सेमीफाइनल की लाइनअप जो है वो भी कंप्लीट हो गई. कल आर्सेनल ने जो है वो स्लाविया प्राग को प्राग में 4-0 शिकस्त दी. आर्सेनल के कप्तान अलेक्जेंडर लैकाज़ेट ने 2 गोल स्कोर किए. इसके अलावा पेपे ने ओपनिंग गोल स्कोर किया एंड देन साका स्कोर्ड इन द 24th मिनट. सो एग्रीगेट 5-1 आर्सेनल ने कामयाबी हासिल की है एंड दे हैव सेट अप देयर सेमीफाइनल्स अगेंस्ट वियारियल. स्पेनिश साइड ऑफ वियारियल जिसके मैनेजर वही हैं जो इससे पहले आर्सेनल के मैनेजर हुआ करते थे और अब से तकरीबन कोई 1.5 साल पहले उनको फारिग कर दिया गया था इनकी पोजीशन से. दूसरी जाने मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ग्रनाडा को शिकस्त दी. स्पेनिश साइड 2-0 से मैन यू ने कामयाबी हासिल की और उनका सेमीफाइनल में मुकाबला होने वाला है रोमा के साथ और दैट इज गोइंग टू बी अ गुड मैच एज वेल. सो या दैट्स द लाइनअप. सो आप ये देख सकते हैं कि जो 8 टीमें यूरोप के जिस इन 2 एलीट टूर्नामेंट्स के सेमीफाइनल में पहुंची हैं उसमें से 4 टीमें आर फ्रॉम द इंग्लिश प्रीमियर लीग. वी हैव गॉट मैन सिटी, चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड आर्सेनल. सो That tells you about अब ये जीते हैं या ये इसका तो पता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये पिछले 2-3 साल में ये चीज़ काफ़ी नज़र आ रही है कि इंग्लिश क्लब्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फीचर कर रहे हैं इन द यूरोपियन सेमीफाइनल्स एंड फाइनल और दैट टेल्स यू अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रीमियर लीग परहैप्स. अब लेकिन देख जीतते हैं या नहीं दैट रिमेन्स टू बी सीन. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. सजाद अली मैन, ये कलाम मुझे बहुत पसंद है यार, सीरियसली. और दिस वाज ब्यूटीफुल एंड होप यू गाइस, एंड आई प्ले दिस अ लॉट एज वेल स्पेशली इन रमजान एंड होप यू गाइस एंजॉय दैट. ऑलराइट चलें जी. थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने आप से बात करूं, ज्यादा लोग सुनने वाले नहीं. देखिए ये तो एक फैक्ट है कि ज्यादा लोग वाकई सुनने वाले नहीं हो. मैंने कल आपको ये बात बताई भी थी कि मैं अभी जब यहाँ से अपने ऑफिस जा रहा होता हूँ तो लिटरली आई एम जस्ट देयर इन लाइक 20-25 मिनट्स आई एम देयर. और अगर मैं रास्ता बताऊं कि मैं कहाँ जाता हूँ तो फिर आप भी कहेंगे कि यार कैसे पहुँच जाते हो. नो आई डोंट ड्राइव फास्टर बट देयर इज हार्डली एनी ट्रैफिक बिकॉज ऑफिसेज, ये सरकारी ऑफिसेज जो 10 बजे वाली कहानी है, जो बैंक की 10 वाली कहानी हुई है, स्पेशली जिस रोड से मैं अभी निकलता हूँ यहाँ पे तो सब बैंक्स ही हैं. सो वाकई काफ़ी सिचुएशन जो है वो इस वक्त पुरसकून है सुबह के इस टाइम पे, इसमें कोई शक नहीं है. एंड आई रियली फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग हाउ मच दीज पीपल गेट टू स्लीप आफ्टर सेरी. डॉक्टर शैला, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच. सईद जान खान कहते हैं हम आपका शो सुन रहे हैं, थैंक यू. अंजुम कियानी साहब ने ट्वीट शेयर किया है, इंडिया रिपोर्ट्स ओवर 216,000 न्यू कोरोना वायरस केसेस, अ न्यू डेली रिकॉर्ड फॉर द कंट्री. बहुत खौफनाक सूरत हाल है. एंड या जो तस्वीरें और जो बता रहा विजुअल्स इंडिया से इस वक्त आ रहे हैं ऑफ द पीपल हु आर वेटिंग टू बी एडमिटेड, जो लोग अस्पताल में एडमिट हो चुके हैं और जिस तरह लाशें ठिकाने लगाई जा रही हैं, मसलन बहुत सारे शमशान घाट की मैं कल शायद जिक्र भी कर रहा था, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों की, यानी जो कोविड प्रोटोकॉल के थ्रू जिनकी बॉडीज़ को जो है वो क्रिमेट किया जा रहा है, उनकी चिताओं को आग लगाई जा रही है, लेकिन जो सरकारी नंबर आ रहा है वो उससे काफ़ी ज़्यादा कम है. सो या वेरी वेरी स्केरी सिचुएशन. और बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की और हम लोगों की हिफाजत करे, बिकॉज मुझे ऑनेस्टली अंदाज़ा नहीं है कि क्या पिछले 1 साल में, आई होप समबडी प्रूव्स मी रॉन्ग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमने अपनी कैपेसिटी को कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया है, लाइक द नंबर ऑफ़ ICU बेड्स, द नंबर ऑफ़ वेंटिलेटर्स, द नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन बेड्स इन ऑल. आई डोंट नो, आई होप आई एम रॉन्ग, आई होप आई एम रॉन्ग. लेकिन वो हमारे अभी तो जो फवाद चौधरी साहब वेंट्स वगैरह बना रहे थे मेड इन पाकिस्तान, उसका क्या हुआ, क्या उसकी सप्लाई आना शुरू हुई है, क्या हो रहा है? आई होप ये सारा काम बीच में हो गया और सो दैट खुदा ना खास्ता, बिकॉज देखिए वेदर वी एक्नॉलेज दैट और नॉट, एक पोस्ट रमज़ान सर्ज एक आना है. अभी जो नंबर आ रहे हैं, ये जो 5,000-5,500 का नंबर चल रहा है, दिस कुड गो टू 7,000-8,000 और मे बी 10,000, बिकॉज लास्ट टाइम भी अगर आपको याद हो तो ये रमज़ान के महीने में ज़रा इबादत का सिलसिला है. मैं मस्जिद कल नज़ारा हुआ वहाँ सब, इट्स एवरीथिंग इज़ सो नॉर्मल. आई मीन अगेन मैं यही कह रहा हूँ, पिछले साल लोग कम अज़ कम बातें तो कर रहे थे इस चीज़ के हवाले से, ये बहस तो हो रही थी, इस साल तो ये बहस भी नहीं हो रही है एंड एवरीथिंग जस्ट अपीयर्स सो नॉर्मल. एंड देन ऑफ कोर्स रमज़ान के आखिरी अशरा आएगा जिसमें ज़ाहिर इबादतों का सिलसिला बढ़ जाता है, लोग बहुत टाइम मस्जिदों में स्पेंड कर रहे होते हैं. एंड देन ऑफ कोर्स ईद विल कम एंड देन फिर दावतों का सिलसिला एंड ऑल एंड देन द सर्ज विल कम इन सम टाइम इन शव्वाल. सो अल्लाह बस खैर करे और रहम करे. मुराद सुमानी हु लिसंस टू माय शो इन टर्की, वो कहते हैं जितने टेस्ट वहाँ हुए हैं उतने तो केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं टर्की में. पाकिस्तान ने कल 64,000 टेस्ट किए हैं जो कि पाकिस्तान का एक नया रिकॉर्ड जो है वो है. सो या लेट्स सी. ओके, अरे आई एम सो सॉरी अहमद अयूब साहब, मैंने आपका कल का मैसेज, आई एम सो सॉरी, मैंने अभी देखा है जी. बट आई कम बैक टू यू ऑन दिस. आप कहते हैं 200,000 प्लस केसेस इन इंडिया बट IPL गोज ऑन, बिजनेस इज लार्जर देन लाइफ. वेल यस एब्सोल्युटली, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, सारी पैसे की गेम है. आपको पता चला होगा यार उसका पॉजिटिव आ गया टेस्ट नोकिया का, जो ये साउथ अफ्रीकन बॉलर है, ये अभी सुना है अभी तक मैच खेलने से कासिर रहा है बिकॉज इसका जो टेस्ट वेस्ट हुआ है पता चला है दैट ही हैज बीन टेस्टेड पॉजिटिव विद COVID-19. काफ़ी सारे अभी 2-3 और प्लेयर्स का भी हमने सुना है कि जिनको कोविड टेस्ट पॉजिटिव हुआ है. उनका इंडिया का कोई स्पिनर भी है उसके साथ भी हुआ था इससे पहले, मुंबई इंडियंस के कोच हैं किरण मोरे साहब जो इनके विकेट कीपर हुआ करते थे. लेकिन अभी तक ज़्यादा बड़ी तादाद में प्लेयर्स को क्योंकि नहीं हुआ है, आई मीन काफ़ी सारे लोग इस IPL को टिकिंग टाइम बॉम्ब भी करार दे रहे हैं. Let's see what happens. Okay, इफ्तखार उल हसन साहब कहते हैं फवाद चौधरी मिनिस्ट्री ना संभालते तो रुयत ऐप मंजर आम पर ना आती और ना 14 रमजान को पहला रोजा होता. ओके अहमद बाम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. एंड फरा मुश्ताक, थैंक यू, जुमा मुबारक कहती हैं सबको. एंड अहमद बाम साहब कहते हैं हाउ कैन वी इन्वेस्ट इन US स्टॉक्स फ्रॉम पाकिस्तान. अच्छा, इट्स अ बिट चैलेंजिंग. देर आर एप्स विच आर अवेलेबल, इस तरह की एप्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप US की मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से फिर वहाँ फंड्स ट्रांसफर एंड ऑल ये है. मैं आई लेट यू नो, आई नो अबाउट कपल ऑफ एप्स, ट्राई करके देख लें सर, शायद सिलसिला हो जाए. एंड देन नवीद मुनव्वर साहब कहते हैं हाजिर जनाब, थैंक यू. आयशा कहती हैं थैंक यू फॉर रीडिंग माय ट्वीट भाई, थैंक यू. काजी शारिक साहब भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं. तारिक अब्दुल्ला साहब कहते हैं रेनी मॉर्निंग इन इस्लामाबाद, व्हाट अ प्लेजेंट वेदर. हैदर अली साहब भी प्रोग्राम सुन रहे हैं और कहते हैं डोंट फील अलोन, वी आर ऑलवेज हेयर, थैंक यू. रिजवान इरशाद साहब बहुत शुक्रिया. वासे लतीफ साहब थैंक यू, एंड माय साइलेंट लिसनर सिंस 2007. अताउ रहमान साहब वेलकम बैक सर, आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ जिसकी वजह से आप मुल्तान में थे, बट अज्यूम यू आर बैक नाउ. अल्लाह ताला मगफरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुमा आमीन. ठीक हो गया जी. ऑलराइट, 40 पास्ट 8 इज द टाइम. दैट वाज मिकाल हसन बैंड विद चल बुलिया एंड जावेद बशीर. What a singer, man. Zabardast, great. I hope you guys enjoyed that. And good morning in those in the program. Abhi tune in kiya hai, Adil ki awaaz aap tak pahunch rahi hai. If you wish to participate in the program as well, aap mujhe tweet kar sakte hain @Adil_Azhar. That's @Adil_Azhar. Anees Mufti saab ka message aaya hai. Kehte hain, good morning. Nothing has improved in hospitals. Acha, main thodi der pehle baat kar raha tha ki pichla jo ek saal guzra hai, kya humne apni kuch capacity building ki hai. Hum India ke numbers ki hum baat kar rahe the corona ki, aur wahan se jo visuals aur jo tasveerein aa rahi hain, jo footages aa rahi hain, wo kafi dardnak hain aur afsosnak hain, aur unko dekh ke wo yahi baat ho rahi hai ki Pakistan mein abhi tak ye situation to nahi aayi hai. But khuda na khasta ek certain fraction bhi iska agar hum एक्सपीरियंस करते हैं, सो आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. आई मीन हैव वी एक्सपेंडेड आर कैपेसिटी बिकॉज कोरोना इज बीन अराउंड फॉर लाइक 14 मंथ्स नाउ. हमने क्या किया इसके हवाले से. सो कोई मुझे इतना अभी तक अच्छा मज़ेदार सा मैसेज जो है, कोई कहते ना हौसला बख्श किस्म का मैसेज मेरे पास आया नहीं है. काशिफ हफीज़ साहब वालेकुम अस्सलाम माय फ्रेंड. असद मिर्ज़ा जो हैं वो इस वक्त लाहौर सियालकोट मोटरवे पर हैं और उन्होंने फुटेज मुझे भेजी है जिसमें इस वक्त कहते हैं जी जस्ट सी द गोल्ड, यानी इस वक्त गंदुम की फसल जो है वो तैयार खड़ी हुई है और कटाई शुरू हो गई है उसकी काफ़ी सारे इलाकों में. कुछ इलाकों में हो गई है, कुछ इलाकों में नहीं हुई है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि इस बार एक्सपेक्टेड ये है दैट एटलीस्ट पंजाब की अगर हम बात करें, सो वी एक्सपेक्टिंग अ बम्पर क्रॉप दिस ईयर. काफ़ी ज़बरदस्त फसल जो है वो आई है. सो लेट्स सी कि उससे पाकिस्तान के स्टॉक्स इम्प्रूव होते हैं, एंड उससे सबसे इम्पोर्टेंटली क्या, बिकॉज सपोर्ट प्राइस नाउ, वैसे जो डिमांड की गई थी इमरान खान साहब से, जो सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन क्या फिर भी आटे की कीमत कम होना तो खैर अजीब सी बात है, लेकिन उम्मीद है कि बस बढ़े ना. ठीक है जी, शैला वकास का मैसेज आया है और काफ़ी दर्दनाक आपका मैसेज आया है, बट क्या कह सकता हूँ मैं. शी इज़ टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑफिस टाइमिंग ड्यूरिंग रमज़ान, और वो ये कहते हैं कि जी सीनियर मैनेजमेंट तो जो गवर्नमेंट के टाइमिंग्स होती हैं वो फॉलो करते हैं, बट बाकी जो वर्कर्स होते हैं वो बेचारे 6 से 7 बल्कि 7 से 8 घंटे जो है वो काम कर रहे होते हैं 6 days a week. आई मीन दिस इज़ सैड शैला, मैं इसमें यही कह सकता हूँ. और रमज़ान के महीने में तो ज़ाहिर है आप पे और जिम्मेदारी भी आती है. आई मीन आइडियली स्पीकिंग सी, आई मीन लाइक वी हैव गॉट आर, हमारे अपने ख़ानदान के लोग हैं ना जो अमेरिका और कनाडा में काम कर रहे हैं और यूके में काम कर रहे हैं, और वहाँ पे तो खैर रमज़ान से कोई टाइमिंग में तो फ़र्क नहीं पड़ता. सो वहाँ पे लोग जाके कैसे पूरे पूरे दिन अपने काम कर रहे होते हैं. ऑल इवन आई मीन आप आसपास भी नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में देख लें तो वहाँ पे भी यही सिलसिला है कि आप पूरा दिन ही काम कर रहे होते हैं. लेकिन पाकिस्तान क्योंकि ज़ाहिर है हम स्पेशल लोग हैं, हमें वो एक स्पेशल टाइमिंग चाहिए होती है. रमज़ान में प्रोडक्टिविटी जनरली कम हो जाती है, सारे काम स्लो हो जाते हैं. तो अगर आप बॉस हैं तो फिर आपको ज़रा इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि आपके जो टीम के लोग हैं उन पे जो है ना वो भी ज़्यादा, जिस तरह आप अपने ऊपर ज़्यादा बोझ लेने को तैयार नहीं है, इस तरह यू नीड टू मेक श्योर कि आपके जो बाकी टीम के मेंबर्स हैं उन पे भी ज़्यादा बोझ ना पड़े. बिकॉज भाई जवाब दे तो हो सकता है, इसके लिए भी आपको होना पड़ेगा ना आपकी टीम की वेलबींग के हवाले से. और दुआएं ले लें किसी की तो फिर क्या बुराई है. ओके जी, एंड देन वासिफ कहते हैं, कीपिंग इन व्यू ऑफ द कंटिन्यूसली डिटेरियोरेटिंग लिविंग कंडीशन इन आर कंट्री, व्हाट डू यू थिंक इज द लास्ट एज अ पर्सन कुड थिंक ऑफ इमिग्रेशन? 34 or 36 मे बी लाइक पॉसिबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग अ लाइफ फ्रॉम द स्क्रैच. नाउ दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन वासिफ, एंड देर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि आपको ज़ाहिर देखने पड़ेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, हाउ वेल सेटल यू आर इन पाकिस्तान, ये भी तो एक बुनियादी, बिकॉज इमिग्रेशन बहुत सारे लोगों के लिए दिस इज़ अ वे ऑफ लेट्स से रीस्टार्टिंग योर लाइफ, एक तो ये भी होता है. और दूसरा ये बहुत सारे लोग ये समझते हैं दैट यार कि इतनी मेहनत करने के बावजूद वो कोई एक सर्टन मकाम पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनको लग भी नहीं रहा कि वो इस रेस में पीछे हैं, तो फिर जाएंगे. बिकॉज बाहर जाके बहुत मेहनत करनी है, इट्स नॉट ईजी सीरियसली, स्पेशली पहले 3-4 साल 5 साल होते हैं. बहुत सारे लोग एक्चुअली सोचते गुजरते हैं कि यार वेदर इट वॉज एक्चुअली वर्थ कमिंग हेयर एंड द सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट आई एम डूइंग एंड द सॉर्ट ऑफ लाइफ दैट आई वॉज लिविंग देयर. सो इसकी कोई सर्टन एज नहीं है, बट हाँ जनरली आई मीन आई बिलीव दैट बाई द एज ऑफ 40 यू आर प्रीटी वेल सेटल्ड इन योर करियर एंड ऑल. उसके बाद जाना फिर दोबारा से अपनी लाइफ जीरो से स्टार्ट करना, आई मीन इफ यू सी अब द पॉइंट इज, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप तैयार हैं यार कुछ भी हो जाए उठा लूंगा बोरे, मैं कर लूंगा शर्ट पैक्स, मैं कर लूंगा पेट्रोल के स्टेशन पे काम, यहाँ पे मैं बैठ के एक बैंक में वाइस प्रेसिडेंट हूँ और बाबू वाला काम कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद यू आर विलिंग टू गिव ऑल दीज थिंग्स अप, दैट्स गो फाइन, फिर तो 50 साल की उम्र में चले जाओ यार. बट ये आपके ज़ाहिर थोड़ा खुद ही पे भी डिपेंड करता है ना, आपकी अपनी उस पर भी डिपेंड करता है कि यार 15 साल मैंने जो 20 साल करियर बना लिया है क्या उसको सब मैं मिट्टी डाल के उसके ऊपर मैं फिर वहाँ पे शर्टें पैक करूँगा. ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं मेरे भाई जो कि देखने पड़ते हैं, बट 40 फॉर मी आई थिंक शुड बी द टाइम. उसके बाद जाना आई थिंक इट्स अ प्रीटी रिस्की थिंग. अहमद अहद नज़ीर साहब, भाई बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर दैट यू हैव शेयर्ड. आपके यहाँ आपकी साहबजादी की विलादत हुई है. अयाना अहद नज़ीर वॉज बॉर्न ऑन 9th of April 2021. कहते हैं भाई वेलकम योर प्रोबेबली यंगेस्ट लिसनर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल पिक्चर. शाहरुख का मैसेज आया है एंड शी सेज नाइस रेनी वेदर इन इस्लामाबाद, इट्स बीन लॉन्ग, यू डोंट रीड माय मैसेजेस, आवर ऑफिस टाइम इज स्टिल 8 AM सो वी हार्डली गेट टाइम टू स्लीप आफ्टर सैरी. आपका मैसेज मैं हर दफ़ा पढ़ता हूँ शाहरुख, अब आप नहीं सुन पा रही मेरे को था मैसेज, ऑफिस जल्दी पहुँच जाती है तो मैं क्या करूँ. नासिर कुरैशी साहब थैंक यू सो मच, इस्लामाबाद से आपने मैसेज भेजा. इरफान बाबर साहब भाई क्या बात है, इस वक्त आप भी इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं. कहते हैं सलाम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन विजिटिंग द एवर ब्यूटीफुल इस्लामाबाद एंड इट इज़ अ वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल मॉर्निंग देयर विदाउट डाउट. इसके अलावा हैदर अली साहब, आई एम एट ऑफिस एंड स्टिल लिसनिंग टू यू, थैंक यू सो मच सर. एंड देन अच्छा जी मंसूर राव साहब इज टॉकिंग अबाउट बुशरा जैदीज, या आई थिंक दिस वॉज वन इंसिडेंट बैक इन 1985 दैट चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री फॉर दिस सिटी एंड चलें अब इस पे अभी बाद में बात करते हैं. अहमद अली अरबानी साहब कहते हैं ड्यू टू लेस ट्रैफिक इट टेक्स 35 मिनट्स टू रीच ऑफिस फ्रॉम हदीद टू पीसीएचएस. यूजुअली इट टेक्स मोर देन 1.5 आवर ड्यूरिंग नॉर्मल डेज. सो दैट्स द ब्लेसिंग ऑफ रमजान. That is very nice. And challenge jab bhi chalte hain aapko break ki jaane milte hain is break ke baad. Don't go anywhere and keep listening. Yeah, welcome back guys. Samar Rise mein ek baar fir se khush aamdeed kehte hain. Adil ki awaaz aap tak pahunch rahi hai. Good morning dosto, program team ka Akil Ahmed sahab, thank you so much kehte hain ji show sun rahe hain. Thank you Akil, bahut shukriya. And then Subaira Khan says I'm responsible for sari iftari office and other housework, but my office starts at 8:30 and my husband at 10:30. How lucky. This is not fair, Sumaira, seriously. Iske ilawa, Fiza Farooqi says, Sindh Infectious Disease Hospital and Research Center, a facility that was being established already, but opened a little earlier due to the COVID outbreak, has been functioning tirelessly throughout the last two waves, with a brand new team of young, energetic consultants providing quality care free of cost since it started. Something positive. Oh, yes, I have actually heard about this place and good to know that new places have come up. Naturally, I would say I think this is the one that is near Nipah Chaurangi. Agar main galti par bilkul Nipah flyover ke shayad yeah exactly I think that's the one. So challenge ji, keep up the good work and I think main abhi bhi ye samajhta hu that government kuch kare yaar, seriously speaking, before this hits, because this is going to hit this third wave, which was is proving to be a killer wave. ये hit करेगी और government को इसके हवाले से जो है ना वो तैयार होना पड़ेगा. Okay, जी. इसके अलावा then we have got एक और message आया हुआ है जिसमें M जहांगीर साहब कहते हैं we have been listening that corona vaccination drive in India was in full swing, then why so much increase in the corona cases? यार देखिए कोरोना जो देखिए दो तीन बातें ज़रा समझनी पड़ेंगी यहाँ पे ना. एक तो ये कि इंडिया में जो वैक्सीनेशन थी ज़ाहिर है वो काफ़ी ज़ोरों से स्टार्ट हुई थी. इस वक्त इंडिया में वैक्सीन्स की काफ़ी ज़बरदस्त कमी है और वैक्सीन की कमी होने की जो वजह है वो ये बताई जा रही है कि इंडिया ने ज़ाहिर है जो रॉ मटेरियल है उनको वो इंपोर्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है. इनका जो सीरम इंस्टीट्यूट है जो कि पुणे में महाराष्ट्र में है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोडक्शन सेंटर है, उनको वो अपनी फुल कैपेसिटी में प्रोड्यूस करने के बावजूद आई थिंक कोविड की जो कुछ सर्टन रॉ मटेरियल है, बिकॉज अमेरिका ने सर्टन रॉ मटेरियल की एक्सपोर्ट्स को जो है वहाँ से रोक दिया है, बिकॉज वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले हम अपनी ज़रूरियात पूरी करेंगे. दिस इज़ कॉल्ड द वैक्सीन नेशनलिज्म जो कि हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं. अच्छा, इंडिया में इतनी तमाम तर इतनी तेज़ी के साथ इस वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट करने के बावजूद, अगर मैं गलती पर ना हूँ, सो ओनली अ परसेंटेज ऑफ देयर पॉपुलेशन, वेरी स्मॉल परसेंटेज, आई थिंक शायद 4-5% ऑफ देयर पॉपुलेशन इज इनोक्यूलेटेड. इनफैक्ट उनको पहली डोज जो है वो दी गई है. इंडिया आपको पता है कि दो वैक्सीन इस्तेमाल कर रहा है. मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो एस्ट्राजेनिका वाली वैक्सीन है वो इस्तेमाल हो रही है, और दूसरी जो एक वैक्सीन इंडिया में अपनी डेवलप की गई है जिसका मेरे ख्याल से नाम कोवैक्सिन है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वो कोवैक्सिन जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं की जा रही है. सो बहरहाल उस पे ज़ाहिर है कुछ उसके कहते हैं जी पीयर रिव्यूड भी नहीं हुए हैं, उसके जो स्टेज 3 ट्रायल्स वगैरह हुए हैं सिलसिला, ये सारी चीज़ें हैं अपनी जगह. सो उनकी प्रोडक्शन में काफ़ी मसले आए हैं. ज़ाहिर है उन्होंने एक बहुत बड़ी तादाद में वो जो वैक्सीन डिप्लोमेसी मोदी साहब ने की थी, जिसकी वजह से इस वक्त उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म का निशाना भी बनाया जा रहा है कि भैया पहले अपनी ज़रूरत पूरी करनी चाहिए थी और फिर उसके बाद जो है वो आपको आना चाहिए था. सो बहरहाल दैट इज़ द थिंग. और तो इतनी अभी ना देखें, अभी आपको पता है कि कल फाइजर की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आई है कि आपको 12 महीने के अंदर अंदर एक और अपने शॉट जो है लगानी पड़ेगी टू हैव अ मच लॉन्गर इम्यूनिटी. सो यार ये जो है ना सिचुएशन. अच्छा, एक और बात भी याद रखिएगा, ये करवा देने का मकसद, वैक्सीनेशन का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आपको अब कोरोना होगा नहीं. ये सिर्फ इसकी सिवेरिटी को गोइंग फॉरवर्ड जो है वो कम कर देगा. सो काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी इंडिया के. मैन आई कैन गो ऑन एंड कैन टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम वाई दे आर नॉट, इंडिया वॉज डूइंग फाइन, बट स्टिल लॉन्ग वे टू गो, लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो. जिसके अलावा फैजान परवेज कहते हैं NICVD is undoubtedly doing a remarkable job and offering free treatment to all cardiac patients. Okay. इसके अलावा जीशान बेग साहब कहते हैं, आपकी रमजान में वर्जिश की क्या तरतीब होती है? सर मेरी रमजान में कोई वर्जिश नहीं होती है. वैसे मैंने इस पे काफी तफसीली जिक्र जो है वो यकुम रमजान वाले दिन किया था. हमारे एक दोस्त ने सवाल पूछा था, तो उसमें जो इशू है सर वो ये है कि मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ कि जरा खाने पीने में एहतियात की जाए, उसी के थ्रू अपने वजन को कंट्रोल किया जाए. भाग दौड़ और ज्यादा कसरत जो है ना रमजान में जरा मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करता हूँ. काश आपकी तरह का स्टेमिना होता, 100 किलोमीटर ज़्यादा साइकिल वन गो में चला लेना, बट ऐसी सूरत हाल जो है ना सर है नहीं. सो या आई थिंक दैट्स द थिंग, क्या किया जा सकता है. ओके गाइज, इट्स अबाउट टाइम दैट आई टेक योर लीव. जाते जाते कौन जी, मुसर्रत का मैसेज आया, कहती हैं गुड मॉर्निंग भैया, ठंडी ठंडी रेनी मॉर्निंग इन माई सिटी भावलपुर. वी शुड बी more careful about wearing masks and sanitizers. Absolutely, we should be. I know ek saal ho gaya hai in ehtiyaton ko karte hue, ek fatigue wala element zarur logon mein aa gaya hai, lekin ye baat yaad rakhni hai that this is important. And as I have been saying, ye shawal ka jo mahina aayega, that's going to be tough for us without doubt. Anyway guys, waqt aa gaya, aap logon se ijazat lijiye, apna bahut bahut khayal rakhiyega. Just in case, I know many of you haven't forgotten, lekin Pakistan versus South Africa aakhri T20 match aaj khela jayega. Great opportunity for Pakistan to wrap up this series, and South Africa will be coming back hard. They can't win that series now, lekin at least they have a point to prove ke ek apni B side ke sath उन्होंने पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ साइड के साथ सीरीज जो है वो ड्रॉ की है. बेस्ट ऑफ विश टू पाकिस्तान साइड, बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान साइड. एंड 5:30 इज द गेम स्टार्ट. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात मंडे मॉर्निंग एक बार फिर होगी. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल वीकेंड अहेड. सो टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद.